संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे।
आज उत्तम त्याग धर्म की चर्चा करनी है। जब जब त्याग धर्म की चर्चा होती है तो दान के गीत गाए जाने लगते हैं, और दिगंबर जैन समाज में तो सारे देश में त्याग धर्म का दिन चंदा करने का ही दिन माना जाता है। इस दिन लोग दान निकालते हैं, दाने की अपील की जाती है, पैसा इकट्ठा किया जाता है, और जितने विद्वान बुलाए जाते हैं उनसे कहते हैं जरा आज त्याग धर्म पर अच्छा व्याख्यान होना चाहिए। अच्छे व्याख्यान का मतलब ये है कि खूब पैसा बरसे। इस तरह ये त्याग धर्म का जो दिन है उसे दान खा जाता है। त्याग धर्म की चर्चा भी नहीं हो पाती है, और बहुत से लोग तो त्याग और दान को एक ही समझते हैं। लेकिन वास्तव में हम विचार करें तो त्याग है धर्म और दान है पुण्य। इन दोनों में महान अंतर है। जो शब्द एकार्थवाची होते हैं तो उनको बदलकर किसी जगह लगाओ तो अर्थ नहीं बदलता है। जल माने पानी, तो जल की जगह आप पानी शब्द का उपयोग करेंगे तो अर्थ थोड़ी बदलेगा। आप कहेंगे एक गिलास जल लाना तो एक गिलास पानी लाना, क्या फर्क पड़ेगा बोलो। यदि त्याग और दान एकार्थवाची है तो उनका हम प्रयोग करके देखें अर्थ बदलता है कि नहीं। अर्थ बदल जाए तो समझ लेना कि दोनों एक नहीं है, और अर्थ ना बदले तो समझ लेना एक है। चार प्रकार के दान है ना, आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान। अब दान की जगह त्याग लगाओ तो आहार दान की जगह आहार त्याग शब्द का उपयोग करें तो दोनों का एक ही अर्थ है। बोलो, आहार दान और आहार त्याग एक ही बात है क्या फर्क है? आहार दान में आप मुनिराज को आहार कराइए और खूब भी भोजन डट के खाइए, खाने का निषेध नहीं है। लेकिन आहार का त्याग किया तो आप एक दाना नहीं खा सकते हैं। तो आहार त्याग और आहार दान में अंतर स्पष्ट है कि नहीं? औषधि दान और औषधि त्याग दोनों का एक ही अर्थ है। और चलो आगे, इनकी में हम थोड़ा बहुत किसी तरह सेट भी कर दें, लेकिन ज्ञान दान और ज्ञान त्याग ज्ञान का दान तो संभव है, ज्ञान का त्याग हो सकता है? तो त्याग शब्द का अर्थ यदि दान होता तो फिर अर्थ नहीं बदलना चाहिए था, यहां तो अर्थ का अनर्थ हो गया। कि ज्ञान दान और ज्ञान त्याग, अभय दान और अभय त्याग, तो इन इतना सा हम अपना प्रयोग करके देखते तो हमें इतना तो पता चल ही जाएगा कि त्याग अलग चीज है और दान अलग चीज। दो चीजें अलग अलग है मदन लाल जी, ये तो हमारे ख्याल में आता है कि नहीं आता है? अब इन दोनों में क्या अंतर है उस पर अपन गहराई से विचार करेंगे। अभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनका दान होता है पर त्याग नहीं होता, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका त्याग होता है पर दान नहीं होता, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनका त्याग भी होता है और दान भी होता है। बता सकते हैं आप? क्यों नंदी भाई, देखो, स्त्री पुत्र मां बाप इनका त्याग हो सकता है, दान नहीं। सुनिए ना, ज्ञान इसका दान हो सकता है, त्याग नहीं। और आहार इसका त्याग भी हो सकता है और दान भी हो सकता है। ये बड़ी बात नहीं है। आप भी थोड़ा माथा मारेंगे तो ऐसे सैकड़ों पदार्थ शोध निकालेंगे कि जिनका त्याग होता है उनका दान नहीं होता, जिनका दान होता है उनका त्याग नहीं होता, कुछ दोनों ही होते हैं। अपन को ये बात तो सिर्फ इसलिए बता रहा हूं मैं कि दोनों में अंतर है हमारे पास में, ये बात ख्याल में आ जाए। शास्त्रीय भाषा में तो मैंने बता दिया आपको कि दान है पुण्य और त्याग है धर्म। ये अपने जो 10 धर्म चल रहे हैं तो ये 10 धर्मों की चर्चा है कि 10 पुण्यों की चर्चा है? तो 10 धर्म है ना, तो दोनों में क्या अंतर है? दान के लिए कम से कम 2 आदमी चाहिए, एक देने वाला और एक लेने वाला, और बीच में कुछ माल भी चाहिए जो दिया जाए और लिया जाए। क्यों? देने वाला नहीं हो तो देगा कौन, और लेने वाला नहीं हो तो लेगा कौन, और दोनों हो और माल ही नहीं हो तो क्या होगा? बोलिए। जैसे मुनिराज आहार लेने वाले, गृहस्थ आहार देने वाले, और वो आहार भी चाहिए ना, तब तो दान संभव हो गया नहीं हो, क्योंकि ये 3 के बिना दान की क्रिया संभव नहीं है। लेकिन त्याग के लिए कोई दूसरा नहीं चाहिए। मुझे कुछ भी त्याग करना है तो लेने वाला चाहिए, और लेने वाला नहीं मिला तो मैं त्याग नहीं कर सकता हूं। मुझे रात्रि भोजन का त्याग करना है तो कोई रात्रि भोजन करने वाला चाहिए कि मैं तुझे दे दूं कि भाई तू करना आज से मेरी ड्यूटी? त्याग करने के लिए कोई लेने वाला नहीं चाहिए और माल भी नहीं चाहिए। ये क्या बात करते हो? हमारे पास माल नहीं हो और हम त्याग कर सकते हैं क्या? हाँ। कि एक आदमी मान लो ब्रह्मचारी है, मैंने कहा था मैंने शादी का त्याग कर दिया। क्या का त्याग किया है? शादी का त्याग। तो तेरी शादी हो गई क्या? कि नहीं, मैं तो नहीं हुई। तो त्याग काय का किया तूने? तेरी शादी है ही नहीं तो त्याग काय का किया? तो शादी नहीं करने का नाम त्याग है ना, तो नहीं करने में क्या करना है? कुछ नहीं, वस्तु चाहिए कोई? शादी का त्याग करने के लिए कोई चीज चाहिए? मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, इसके लिए प्रधानमंत्री पद चाहिए? उसका त्याग करने के लिए अपने है ना परिग्रह परिमाण व्रत लेते हैं ना पंडित जी, कि मैं 10,000 रुपए से ज्यादा, 10,00,000 रुपए से ज्यादा नहीं रखूंगा। तो मैंने चक्रवर्तित्व का त्याग किया कि नहीं किया? मैंने इससे ज्यादा नहीं रखूंगा तो मेरे पास है कहां? त्याग हो सकता कि नहीं? तो जिस वस्तु का त्याग करना है वो वस्तु हमारे पास हो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वो नहीं हो तो भी त्याग हो सकता है, क्योंकि नहीं है आज मैं कल ग्रहण नहीं करूंगा। हमने तो अपने भाव में उसके प्रति जो राग है उसका त्याग करना है। वास्तव में पर वस्तु का त्याग होता ही नहीं है, क्योंकि पर वस्तु तेरी आज तक हुई नहीं, तू कौन होता है त्याग करने वाला और ग्रहण करने वाला? क्योंकि भगवान आत्मा में एक त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है। उसका क्या काम है? कि वो किसी का ना त्याग कर सकता है ना ग्रहण कर सकता है। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से बिल्कुल जुदे हैं, तो पर का त्याग का सवाल ही क्या है? तो त्याग क्या है का? कि पर के प्रति जो हमारा अपनापन है, एकत्व बुद्धि है, मिथ्यात्व से बोलते हैं, अथवा पर के प्रति जो राग है, अथवा पर के प्रति जो द्वेष है, वो छोड़े जाते हैं। वो तो अपने बेकारी भाव है। अपने भगवान को राग द्वेष परित्यागी साम्य भावाव बोध कहा, उनको राग द्वेष का त्यागी कहा है, उनको पर का त्यागी नहीं कहा। तो कहा नहीं कहा? हम अपने भगवान को कहते बीत राग कहते हैं, बीत धन तो नहीं कहते, बीत मकान तो नहीं कहते, बीत स्त्री बीत पुत्र तो नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? बीत राग। वास्तव में तो हमारे अंदर जो पर के प्रति अपनापन का भाव है, जिसे शास्त्रीय भाषा में मिथ्यात्व कहते हैं, पर की जो चाह है जिसे शास्त्रीय भाषा में राग कहते हैं, और जो पर के प्रति घृणा है जिसे शास्त्रीय भाषा में द्वेष कहते हैं, इन मिथ्यात्व राग द्वेष का त्याग किया जाता है। त्याग हमेशा बुरी चीज का किया जाता है, अच्छी चीज का नहीं किया जाता। और दान हमेशा अच्छी चीज का दिया जाता है, कितना फर्क है? क्यों? जो चीज किसी काम की नहीं रही, ये फटा हुआ रूमाल है, मैं इसे किसी को दूं तो दान माना जाएगा? अच्छी चीज ताजी बढ़िया नहीं होना चाहिए तो ही दान मानते कि नहीं मानते, बोलो। दान अच्छी चीज का दिया जाता है, उपयोगी चीज का दिया जाता है, काम की चीज का दिया जाता है, और त्याग खोटी चीज का दिया जाता है। राग द्वेष छोड़े जाते हैं, रात्रि भोजन छोड़ा जाता है, रात्रि भोजन में दान नहीं दिया था रात्रि भोजन का। क्या हमने 1000 साधर्मियों का भोजन कराया, क्यों त्रिलोचन जी? शाम को 5 बजे से रात्रि को 12 बजे तक चलेगा, और लिखा है कि दिन में भोजन करने वालों के लिए भी व्यवस्था है, कार्ड में लिखा है। ऐसा क्यों नहीं लिखा कि रात्रि में भोजन करने वालों को भी व्यवस्था है? ऐसा क्यों नहीं लिखा? अब ये बेचारे दिन में भोजन करने वाले भी में आ गए, इक्का दुक्का कोई आएगा तो क्यों? अब पहुंच जाए कोई 5 बजे ना, तो 7 बजे तक घर वाला कोई मिलेगा ही नहीं। ये दान है, ये त्याग है, ये क्या है? अभक्ष भक्षण के पदार्थ दिए जा रहे हैं, अनंत जीवों की जिनमें हिंसा हो रही वो खिलाया जा रहा, वो आहार दान है? उसमें कोई धर्म होगा? पुण्य तो होगा ही, महापाप होने वाला है। जो आरंभ का पाप होगा, जो जीव मरेंगे वो पाप होगा, वो हिंसा का पाप होने वाला है। क्यों? हम त्याग का तो वास्तविक स्वरूप समझते ही नहीं है, हम दान का भी वास्तविक स्वरूप नहीं समझते हैं। मैं इन दोनों का स्वरूप समझाने के लिए आपकी अदालत में 2 दिग्गज आचार्यों को पेश करता हूं। एक तो आचार्य उमा स्वामी, तत्वार सूत्र के कर्ता, उनने 7वें अध्याय के अंत में दान की परिभाषा दी है। आपको याद है मैंने बताया था 7वां अध्याय तत्वार सूत्र का कौन से तत्व का निरूपण करने वाला है? त्रिलोचन जी, आश्रम के संवर, वहां बताया था ना, भारतीय विद्या भवन में आश्रम अधिकार है, तो दान का प्रकरण आश्रम अधिकार में है लाल जी, और त्याग का प्रकरण 10 धर्म है, 10 धर्म में उत्तम त्याग आता है ना, वो कौन से अध्याय में है? 9वें में। वो काय का अध्याय है? संबंध निर्जरा का। तो त्याग का प्रकरण है संबंध निर्जरा में पंडित जी, और दान का प्रकरण है आश्रम में, और आश्रम और संबंध विरोधी है ना परस्पर, तो त्याग और दान परस्पर विरोधी हुए। जो परस्पर विरोधी है उन्हें हमने एक मान रखा है। तो सर्वेक्षण करो, मेरी इस किताब को लिखे हुए कम से कम 25 वर्ष हो गए हैं, और मैंने सब विद्वानों को साधु संतों को भेजी है, 1,00,000 किताब छपी है, और मैं बराबर 35 साल से व्याख्यान कर रहा हूं, इतनी पहुंच गई है। लेकिन आज सर्वेक्षण करो तो सब जगह त्याग और दान को एक ही बताया जा रहा होगा, 99%। क्या करें, बोलो, अंधकार कितना घना है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तत्वासूत्र सबने पढ़ा है कि नहीं? सर्वार सिद्धि पढ़ी है, तत्वासूत्र पढ़ा है, राजवार्तिक पढ़ा है पंडित जी, श्लोक वार्तिक पढ़ा है, तो सब जगह वो आश्रम का अधिकार है कि नहीं? वो संबर का है, दान आश्रम अधिकार में, त्याग संबर अधिकार में, दो परस्पर विरोधी थे उन दोनों को हम एक ही मान रहे हैं। तो दान नहीं देना चाहिए। कौन कह रहा है कि नहीं देना चाहिए? यहां तो सिर्फ त्याग और दान में क्या फर्क है ये समझाया जा रहा है। त्याग भी करना चाहिए और दान भी देना चाहिए, मना कौन कर रहा है? अपनी अपनी भूमिका के अनुसार जो चीज है वो सही समझ के वो करना चाहिए। हम आपसे कहेंगे बेटे और जमाई में अंतर समझना चाहिए, तो जमाई को कुछ नहीं देना चाहिए, सब कुछ बेटे को ही देना चाहिए, कब कह रहे हैं? मैं तो कहता हूं सब जमाई को दे दो, बेटे को कुछ मत दो, लेकिन फर्क तो समझोगे ये जमाई है और ये बेटा है। यहां तो अंतर समझने की बात चल रही है, यहां करने और नहीं करने की बात नहीं है। हम ऐसे आश्चर्य की बात करते हैं डॉक्टर साहब। पहले गुरु पढ़ाते थे ना वो गुरु जी, एक रुपए का यदि पांच शेर माल आता है, गुड़ आता है, तो एक आने का पांच फटक पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा था आपने ऐसा? तो गुड़ का भाव तो एक रुपए शेर था, और गुरुजी ने बताया एक रुपए का पांच शेर गुड़ आता है, तो एक आना का पांच फटक, तो गुरुजी पांच शेर दस रुपए का गुड़ दे दो। बेटा यहां गुड़ बिकता नहीं है, यहां तो गणित पढ़ाया जाता है गुड़ के माध्यम से। गुड़ खरीदना हो तो गुड़ पंसारी की दुकान पर जाना, यहां उपवास कराया नहीं जाता, उपवास छुड़ाया नहीं जाता। समझे ना? यहां दान कराया नहीं जाता, दान छुड़ाया नहीं जाता, यहां त्याग कराया नहीं जाता, त्याग छुड़ाया नहीं जाता, यहां तो त्याग और दान दोनों का स्वरूप समझाया जाता है। ये पाठशाला है, ये दुकान नहीं है बनिएगी। आचरण तो अपने विवेक से समझ के करना, यहां तो समझ लो कि स्वरूप क्या है दोनों का अंतर। तो मैं कह रहा था उमा स्वामी को आपको पेश करता हूं, सातवें अध्याय में क्या लिखे दान की परिभाषा, स्वपर अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। और सर्वार सिद्धि में उसका क्या अर्थ किया पंडित जी? उसमें स्वर पर और लगा दिया कि अपने और पराये उपकार की भावना से धनाधिक पदार्थों का देना, उसका नाम है दान। तो उसमें परोपकार की भावना दान में प्रधान है, और त्याग में परोपकार की भावना बिल्कुल नहीं है। आपने स्त्री पुत्र छोड़े तो स्त्री पुत्र का कल्याण करने के लिए छोड़े होंगे, उन्हें कि तुम बेटा कल्याण कर जाओ, हम वहां से तुम्हें छोड़ के हैं, क्यों वे तो बेचारे रोते हैं और तुम्हारे बिना अनाथ हो जाते हैं। दूसरे के कल्याण के कारण त्याग किया जाता है। मैंने आज से रात्रि भोजन का त्याग किया क्योंकि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसके लिए त्याग अपने आत्मा के कल्याण के लिए किया जाता है, और दान दूसरे के कल्याण की भावना से दिया जाता है। कितना अंतर! इन्हें दान पर लक्ष्य से किया गया काम है, और त्याग स्वलक्ष्य से किया गया, कितना फर्क है, अंतर तो देखो। और त्याग की परिभाषा आचार्य कुंदकुंद ने समय सार की 34वीं गाथा में लिखी है। क्या लिखी है याद होगी, गुरुदेव ने खूब सुनाया है। जम्मा सब्बे भावा पच्चखाई परे तिड़ा दूणम तम्मा पच्चखाणम प्राणम नियमा मुणे दब्दम। जम्मा सब्बे भावा, जब सारे पर पदार्थ ये परे तिणादू ये पर है ऐसा जानकर, त्याग की एक शर्त है जिसको त्यागो पहले उसे पर जानो। ये मेरा है और मैं त्यागता हूं, ये त्याग का स्वरूप नहीं है। और दान की ऐसी शर्त है, ये मेरा है और मैं देता हूं। ऐसा नहीं है कि इनकी जेब में से 100 का नोट निकाला और तुम्हें दे दिया और मैंने दान दिया। क्यों जी? दूसरे की जेब में से निकाल के दान पैसा दे देवे किसी को तो उसका नाम क्या है? दान है? क्या है? चोरी। अपने पढ़ी नहीं बाल बोध पाठमाला में, किसी की गिरी हुई पड़ी हुई भूली हुई रखी हुई वस्तु को स्वयं उठा लेना अथवा उठाकर किसी दूसरे को दे देना, उसे चोरी कहते हैं। बोलो क्यों? इसे तो चोरी कहते हैं, इसे दान कहां कहते हैं? ये मेरी है, व्यवहार से मेरी है ना संपत्ति, तो मैं उसे दे सकता हूं। तो दान अपनी वस्तु का किया जाता है और त्याग उसे परजन का किया जाता है। ये मेरी नहीं है, स्त्री पुत्र से मेरा कोई नाता नहीं है, इसलिए छोड़े जाते ऐसा मान के, है तो मेरी लेकिन फिर मैं छोड़ता हूं, ऐसा नहीं होता। क्या शर्त है? जम्मा शब्दे भावा परे तिणादूय, जब सब पर पदार्थ पर है ऐसा जानकर, परे ति माने पर है, तिणादूय माने जानकर, तम महापच्चखाणम प्राणम नियमा मुणे दब्बम, उसे प्रत्याख्यान कहते हैं। और प्रत्याख्यान माने त्याग, वो नियम से ज्ञान ही है, ऐसा लिखा। क्या क्या ज्ञान ही है, क्या क्या कहने का मतलब? कि त्याग है क्या? तुमने पर पदार्थ को पर जान लिया, बस हो गया त्याग। क्या क्या कर रहे? अब त्याग क्या करना? जब आपने समझ लिया कि मेरा नहीं है तो बात खत्म हो गई ना। चक्रवर्ती ने 6 खंड की विभूति छोड़ी, आती कि नहीं आती है? घोड़े 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी इत्यादि के संपत्ति बहु तेरी, जीराण त्रसाम त्यागी। 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 96 करोड़ गांव, कितनी कितनी संपत्ति, 96,000 पत्नियां, ये सब जीर्ण तृण, जीर्ण समझते, तिनका, तिनका भी कौन सड़ा सड़ाया, सादा नहीं, उसके समान छोड़ दी। मैं बड़ा घबरा गया कि जब 18 करोड़ घोड़े छोड़े होंगे और 84 लाख हाथी छोड़े होंगे तो बाजार की क्या हालत हुई होगी। एक हाथी यदि बिना महावत का बाजार में से निकल जाए, एक घोड़ा निकल जाए, जो तहलका मच जाता है कि नहीं मच जाता है, कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं। क्यों 18 करोड़ घोड़े छोड़े होंगे तब क्या हुआ होगा कामदार? क्या आप समझते तो हनी पंडित जी, तो समझा दो, क्या नहीं समझते? कि घोड़े छोड़े थोड़ी हैं, घोड़े तो घुड़सार में ही रहे। तो क्या छोड़ा मुझे बताओ फिर? कि ये मेरे हैं, अभी तक ऐसा राग था और अब वो राग टूट गया, बस इसका नाम छोड़े। घोड़े तो घुड़सार में ही रहे, खुद छोड़ के चले गए, बस हाथी हाथी की जगह, घोड़े घोड़े की जगह। ख्याल में त्याग का मतलब समझ में है ना? जब दान दिया, एक गाय दान दी, एक घोड़ा दान दिया, तो क्या होता है? घोड़े को घुड़सार से छोड़ करके देने वाले को देंगे और वो ले जाएगा, घोड़ा जाएगा, हम अपने सिंहासन पर जमे रहेंगे। और जब हम त्याग करेंगे तब घोड़ा घुड़साड़ में रहेगा, हाथी हाथी की जगह रहेगा और हम छोड़ के चले जाएंगे जंगल में। फर्क अंतर समझ में आता कितना हर है त्याग में और दान में? तो उन्होंने कहा नानमणीय में उमरदन, तो इतना जाना कि ये मेरे नहीं है तो त्याग हो गया। आपकी जेब में 10,000 नोट रखे और आप समझते थे ये मेरे हैं। भाई मुरानी जी, मैंने जो 10,000 रुपये दिए थे ना, वो आपके नहीं है, आपको नितिन भाई को देना है। हो गया, एक सेकंड में काम हो गया ना। अभी नोट तो कल पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे, जब होगा हो जाएगा, लेकिन एक सेकंड में त्याग भाव आ गया ना कि ये मेरे नहीं है। और यदि सज्जन हो तो वो खोए तो मेरे और रहे तो नितिन भाई के। नहीं आया समझ में? क्या जेब में से गायब हो जाए तो मेरे क्या, बाप का क्या, नितिन भाई के पास नहीं साहब, मैं तो आपको दूंगा, कर्जा करके दूंगा, लेकिन मेरे पास से गए हैं आपके। सज्जन हो तो ऐसा बोल, तो ये तो बोझा रह गया, अब ये तो चौकीदारी रह गई ना। तो त्याग कहां हुआ? वस्तु में त्याग होता ही नहीं है, त्याग तो ज्ञान में होता है। ज्ञान में जाना था कि ये मेरे हैं, और ज्ञान में जाना गए मेरे नहीं है, काम खत्म। इसलिए समय सार की 34वीं गाथा लिखा, प्राणम नियमा मुड़े दबदम। इसलिए ज्ञान नियम से ज्ञान ही त्याग है। टीका पढ़ना, उसमें क्या लिखाएंगे? अपने में स्थिर हुआ ज्ञान ही त्याग है। पढ़ा, गुरुदेव के प्रश्न पढ़ना, क्या मतलब है इसका? कि ज्ञान ने जाना कि ये मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है, तो आप इसको जानते रहने से भी क्या फायदा है? तो वहां से उपयोग हटा के और अपने में आ गया और ज्ञान वहीं स्थिर हो गया, बस इसका नाम त्याग है। तो उसका क्या हुआ, हमें क्या लेना देना, हमारा है ही नहीं, तो फिर क्या हुआ, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो एक बात कहता हूं, अपने यहां ये त्याग शब्द कितना पवित्र है। त्याग के बाद अकिंचन और ब्रह्मचारी मुसीदत मोक्ष होता है, पूजा में लिखाना, उत्तम क्षमा मार्दव आर जब भाव है, ये तीन तो भाव है, सत्य सत्य शौच संयम तप त्याग, ये पांच उपाय है। उसका अर्थ है कुछ भाई साहब ऐसा ही नहीं है, सुखबंदी नहीं है, तीन आत्मा के स्वभाव भाव है और ये पांच चीजें उन स्वभाव भाव को प्राप्त करने के उपाय हैं। और आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सार है, और आकिंचन और ब्रह्मचर्य ये धर्म दस धर्म का सार है। कल तो सुमावाणी का होगा ना दर्शन, अभी सार सुनना हो तो परसों सुनाना पड़ेगा। दस धर्मों का सार क्या है? आकिंचन और ब्रह्मचर्य। चहू गति दुखते काल मुक्ति कर तार है, ये चार गति के दुखों से निकालकर मुक्ति में पहुंचाएंगे। ज्ञानत धर्म दस पेड़ चढ़ के शिव महल में पग धरा, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? ज्ञानत कवि कहते हैं कि ये दस सीढ़ियां हैं और दस सीढ़ियों पे ऐसे ऐसे पैर रखते जाओ तो दस सीढ़ी के बाद में मुक्ति रूपी महल आ जाएगा। तो उसके बाद में तुम्हारा पैर कहां पड़ेगा? शिव महल में पग धरा, तुम्हारा पैर मुक्ति रूपी महल में पड़ेगा। कौन सी सीढ़ी पे आ गए अपन आज? कौन सी सीढ़ी है भगवान जाने, तुम्हें जानो कौन सी? आठवीं, त्याग धर्म है ना, तो आठवीं सीढ़ी पे आ गए। तो नौवीं सीढ़ी आकिंचन, मैंने कुछ भी त्याग किया ना सब कुछ, तो कुछ नहीं बचा मेरे पास, उसका नाम आकिंचन। और दसवीं, अब मैं ही बचा तो उसमें लीन हो गया ब्रह्मचर्य, ब्रह्म माने मैं, अब उसमें लीन हो गया तो अगला कदम कहां जाएगा? दसवीं सीढ़ियां खत्म, तो ग्यारहवीं तो कोई सीढ़ी है नहीं, तो मुक्ति के महल में पैर पहुंच जाएगा। बोलो कौन सी सीढ़ी पे आ गए हैं? त्याग के बाद अकिंचन होने वाले हो। क्या किया, क्या किया उन्होंने? क्या ज्ञान में स्थिर हुआ, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ऐसा लिखा। ज्ञान माने भगवान आत्मा, उसमें तेरा ज्ञान स्थिर हो गया, उसका नाम प्रत्याख्यान माने त्याग है, त्याग धर्म है। अरे राग देश मोह भी त्यागे नहीं जाते हैं, पर पदार्थ तो त्यागे जाते ही नहीं, क्योंकि वे तो अपने नहीं है, वजह माना तो खत्म हो गया काम, जो हमारे नहीं है, हमने समझ लिया कि हमारे नहीं है तो बात खत्म हो गई। तो राग देश मोह तो त्यागे, अभी अभी आपने कहा था कि राग देश भी मैं नहीं हूं ऐसा माना तो उनका त्याग हो गया। जैसे पर पदार्थ पर में रहेंगे, ऐसे राग देश में रहेंगे, और वो तो भूमिका के अनुसार अपने आप चले जाएंगे। आज तू त्यागना चाहे तो आज जाने वाले नहीं है, ख्याल में आए ना, जाएंगे तो भूमिका के अनुसार, लेकिन तू चाहे तो आज ये मान सकता है कि ये मैं नहीं हूं। तो इनमें अपनेपन का त्याग रूप जो त्याग धर्म है वो अभी यही हो सकता है। घबराना नहीं, वो तिजोरी की चाबी तुम्हारे पास रहेगी तब भी, बैंक के खाते तुम्हारे पास रहेंगे तब भी, और राग देश मौजूद रहेंगे तब भी। इतना हुआ कि ये मैं नहीं हूं, देखा ना, ज्ञान ही त्याग है, माने ये जाना तो त्याग हो गया, बाकी का जो त्याग हो परिणाम है का मतलब समझे ना। पति पत्नी ने मिलकर नक्की कर लिया या हम तुम दोनों आपस में तलाक देने के लिए राजी है, ऐसा समझ लो कि अपन दोनों जने ब्रह्मचर्य ले लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, हमारे आगे पास चलते, अब आजकल जरा अच्छा नहीं लगता है वो बातें, मैं इसलिए मैं तलाक की बात कहता हूं। दोनों ने सच बिल्कुल मिल करके नक्की कर लिया, क्यों तो हो गया ना त्याग, तलाक हो गया ना। अब बाकी तो प्रक्रिया बाकी है, तो होती रहेगी। समझ नहीं आई मैं बात क्या कहना चाहता हूं। जब दोनों ने नक्की कर लिया कि अब जाकर के अदालत में जाएंगे, नोटिस देना पड़ेगा वकीलों के माध्यम से, फिर दो साल का सेपरेशन का पीरियड मिलेगा, फिर दो साल बाद जाके अदालत में जाएंगे तब मंजूर होगी, तो प्रक्रिया तीन साल चलेगी, होती रहेगी। हमने तुमने नक्की कर लिया ना, तो असली त्याग तो हो गया, बाकी तो प्रक्रिया पूरी होनी है। हमने नक्की कर लिया कि अपन को तो अब दीक्षा लेनी है, अब महाराज देंगे, वो कहेंगे नहीं भाई 15 दिन बाद दूंगा, अगली साल दूंगा, तो वो होता रहेगा। तो तब तक हम क्या करें, क्या करो, जाओ अपने आराम से अलग अलग। लेकिन महाराज ने ब्रह्मचर्य तो दिया ही नहीं, हम क्या करें। अरे तुम ब्रह्मचर्य से रहो ना, तुम्हें कौन रोकता है। इसमें महाराज क्या कर लेंगे, वो तो प्रक्रिया बाकी है। आपने श्रद्धा में यह नक्की कर लिया कि राग द्वेष मिथ्यात्व में नहीं हूं, ये पर पदार्थ में नहीं हूं, तो असली त्याग धर्म तो हो गया। अब बाकी तो भूमिका के अनुसार चौथे गुण स्थान में जितना छूटेगा वहां छूट जाएगा, बाकी पांचवें में छूटेगा, कुछ छठवें में छूटेगा, सात में, आठ में, नौ में, दस में तक आता है। सूक्ष्म लोभ रहता है, क्यों, पूर्ण वितरागी जब तक नहीं होगे तब तक धीरे धीरे छूटता रहेगा, और वहां भी देह भी रहेगी, और परिग्रह समोषण का परिग्रह लिपट जाएगा, चाहूं तब से देवता आगे जय जयकार लगाएंगे, लगाते रहेंगे। तुम्हारे बाप का क्या जाना है, तुम अपने में मंगे देना, गालियां देने वाले गालियां देते रहेंगे, जयकार लगाने वाले जयकारा लगाते रहेंगे। क्या चीज है त्याग धर्म, ख्याल में आना करें। राणम नियमा मुड़े दब्यम, समय सार की गाथा है 34वीं, जब वो तो ज्ञान में ही स्थिर हुआ, ज्ञान ही त्याग है। त्याग तो महान, कितनी महान चीज है, उसकी कल्पना तो हमारे ख्याल में है ही नहीं, लेकिन दान का भी हम सही स्वरूप कहां जानते हैं। दान कितने प्रकार का होता भैया, पूजा में नहीं पड़ा आज, दान चार प्रकार, चार संघ खो दीजिए, लिखा के पढ़ा था नहीं पढ़ा था, तो कौन है चार प्रकार, आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान, ये चार है ना, तो चार संघ कौन है, मुनिराज, श्रावक, श्राविका और आरिका, यही है ना चार संघ। अब मैं पूछता हूं कि आपने इन्हें 1 लाख का दान दिया, इन्हें 5 लाख का दान दिया, तो ये 5 लाख क्या, 5 लाख ज्ञान दिएगा, 5 लाख आहार, क्या 5 लाख क्या होता है, क्यों बीनू भाई, क्योंकि दान तो चार ही प्रकार के हैं ना, आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान, तो 5 लाख क्या है ये, के रुपया, तो रुपया दान नाम का कोई दान है, बोलो बोलो मदन लाल जी है, किसको दिए आपको भी मालूम, बॉम्बे हॉस्पिटल को, बोलो नाम ले तो कुछ भी ले दूं, कोई 10 लोग को सही, मुझे क्या फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ लो आप। तो हमें क्या लगे, चार संघ को दीजिए, तो जिस लोग हॉस्पिटल मुनि होंगे, आरिका होंगे, श्रावक होंगे, श्राविका क्या है, अब तुम्हारी पूजा में तो ये पढ़ते हो कि दान चार प्रकार और चार संघ को दीजिए, अब जिसको दिया ना उन चार संघ में वो मौजूद है, और जो दिए ना वो चार प्रकार में मौजूद है। नाराज मत हो जाना, देना हो तो खूब अस्पताल खोलना, नहीं तो अस्पताल वाले मेरे से नाराज हो जाएंगे। समझना क्या है, क्या लिखा है, लिखा क्या नहीं लिखा रमेश भाई, दान चार प्रकार चार संघ को दीजिए, चार संघ में कौन संघ आपके शास्त्र में लिखे होंगे कहीं ना, कि किन को देना, ये भी लिखा होगा, और चार प्रकार का दान कौन है ये भी लिखा होगा। अब देखिए चार प्रकार के दान है, अपने समाज में जितने दानवीर हैं तो उनमें आहार दान, दान देने वाले को दानवीर की उपाधि समाज ने दी आज तक, है कोई एक आज जिसने आहार दिया था, मुनिराधों को, इसलिए उसको दानवीर की उपाधि दी गई, बताओ मुझे नहीं है? औषध दान देने वाला कोई वैद्य डॉक्टर को आपने दिया आज तक दानवीर की उपाधि? नहीं है। तो ज्ञान दान देने वाले को कभी दानवीर की उपाधि दी? अभय दान देने वाले को दी? किसको दी? ये सारे दानवीर ये दो नंबर वाले पैसे ही वाले हैं। पैसा नाम का कहीं दान ही नहीं है। पर दानवीर की सारी उपाधियां जो हड़प ले गए क्यों? पंडित को देनी होगी तो विद्या भारती वाणी विभूषण क्यों? दानवीर दोनों हमें, हमने निकल गया मालूम 16 वर्ष की उम्र से लेकर आज तक ऐसा दिन नहीं गया होगा कि जिस दिन प्रवचन नहीं किया है, अस्पताल में होंगे या प्रवचन की गद्दी पर होंगे, जिस दिन पढ़ाया नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा। क्यों हमें क्यों नहीं देते दानवीर की उपाधि? घबराना नहीं, तुम दोगे तो हम लेने वाले भी नहीं है। मैं तो बता रहा हूं कि ज्ञान दान भी एक दान है, उसमें भी कोई दानवीर हो सकता है कि नहीं? जिंदगी भर एक पैसा नहीं लिया और हाथ देख सेवा कर करके लोगों को दवाइयां दी, ऐसे किसी वैद्य को दानवीर की उपाधि दी आपने? शुद्ध सात्विक क्यों? मैं धंधेबाज वालों की नहीं कहता हूं कि सुबह से शाम तक बगले जैसे बैठकर बेचारे उन बीमारों का पेट काट करके अपने घर भरने वालों की बात के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसे भी लोग तो है ना समाज में। क्यों? क्योंकि हमारी समझ में भी नहीं आता है कि ये भी कोई दान है। पढ़ते हैं दान चार प्रकार, लेकिन वो देने वाला हमें दान नहीं है। आहार दान भी हमारे यहां तो सेठ जी देते हैं। क्यों? उन्होंने 5 लाख रुपया दे दिया, महाराज के साथ 2 बसें लगा दी, उनके साथ आदमी लगा दिए, वहां चौका लगाने वाले चौका लगाते रहे, यहां से बंबई तक जाएं, कलकत्ता ले जाएंगे, शिखर जी ले जाएंगे, तो दानवीर कौन कहलाएंगे? वे सेठ जी, उन्हें एक दिन आहार दान कैसा होता है वे जानते ही नहीं है। क्यों? अब भाग्य से जो रोजाना बना बना के भक्तिपूर्वक दे रहे हैं उनके पास नहीं है इतना पैसा, बस पिछले वे मजदूर हो गए, वे आहार दान देने वाले नहीं रहे। क्यों? चंद्र जी बोलो मुझे, विचार करो आप, मुझे बड़ा स्पष्ट। आज के दिन हिंदुस्तान के 5000 मंदिरों में, दिगंबर मंदिरों में ऐसे पंडित पहुंच गए होंगे जो खड़े होकर बोल रहे होंगे इसी गद्दी पर कि हमारी संस्था को दान दो तो आपको चारों दानों का लाभ मिल जाएगा। कि कैसे मिल जाएगा? कि हमारे यहां छात्रावास है, उसमें लड़के भोजन करते हैं, दिन में रात में आलू वालू सब बनता है, उस छात्रावास को तुम दान दो तो वो आहार दान हो गया। बोलो सर, वह लड़के पढ़ते हैं कोई मेडिकल कॉलेज में, कोई इंजीनियर कॉलेज में, तो वो ज्ञान हुआ तो वो ज्ञान दान हो गया। हमने वहां एक बाहुबली व्यायामशाला खोल रखी है तो उन्हें पहलवानी सिखाते हैं तो वो अभय दान हो गया। और लड़के बीमार हो जाते हैं तो उन्हें भक्ष भक्ष औषधियां खिलाते हैं तो वो औषध दान हो गया। हमारी संस्था को दान दो तुम्हें चारों दानों का लाभ मिल जाए। क्यों? यही होगा। इंजीनियरिंग डॉक्टरी ये जो पढ़ाई है इसी का नाम ज्ञान होगा और इसी का नाम ज्ञान दान होगा। क्यों? क्या आत्मज्ञान ही ज्ञान है और शेष सभी अज्ञान? क्यों? वो उसी का नाम ज्ञान दान होगा। और पहलवानी करके गुंडागिर्दी करना उसी का नाम अभय दान होगा। और भक्ष भक्ष दिनों रात में खाना उसी का नाम आहार दान होगा। क्यों? लेकिन क्या है? लेने वाले को पैसा चाहिए और देने वाले को नाम चाहिए पार्टियों पर लिखाने के लिए। दोनों का काम हो जाता है। गांधी जी ने लिखा कि हिंदुस्तान के भिखारी दानवीरों से ज्यादा फायदे में है। क्यों? कि उसको पैसा चाहिए और दानवीरों को नाम चाहिए, तो उसे तो पैसा मिल ही जाता है। अबे दानवीर नाम होता है कि बदनाम होता है भगवान जाने क्या होता है। हम देंगे आपको 5 लाख रुपया लेकिन हमारा नाम कहां लिखाओगे ये बताओ पहले। ये यहां लिखवा देंगे ना, यहां पर सामने अच्छा रहेगा ना। अरे यहां कौन देखता है? तो कहां लिखवाओगे? भगवान के नीचे लिखवा, वहां कौन देखता है छोटे छोटे अक्षरों में? तो कहां लिखाएं? कि सीढ़ी पे लिखा दो। सीढ़ी सीढ़ी पर खुदवा दो बड़े बड़े अक्षरों में मेरा नाम, क्योंकि जो ऊपर जीने पर आएगा नीचे देखे बिना तो सीढ़ी चढ़ नहीं सकता है, नहीं तो गिरने का डर है। तो मेरा नाम जरूर पड़ेगा, हर आदमी अंदर में आए मेरा नाम पढ़ना चाहिए। मैंने कहा सेठ जी तुमने अपनी सबसे बढ़िया जगह चुन ली कि जो आदमी इस मंदिर में आए तुम्हारे लात की उसके जूते की ठोकर तुम्हारे में एक जरूर लगनी चाहिए, इसके बिना तुम्हारा मान गलेगा। इसका नाम दान है। किसे कहते हैं दान? ये पैसे का दान ही सब दान हो गया है। वो चार दानों का कोई नाम ही नहीं जानता, चार संघ का कोई नाम ही नहीं जानता है। हम क्या और उसी के गीत और सब पूरा सबका उपयोग उसी में लग रहा है। दान दान भी कहां, दान के नाम पे चंदा जबरन वसूली बोलते कि नहीं बोलते। दिन मांगे दे दूध बराबर और मांग के देवे पानी और वह देना है खून बराबर जावे खेता। हम भी संस्था तो चलाते हैं ना, 30 सालों का आज तक प्रतिज्ञा है पंडित जी, ना भरी सभा में ना अकेले में ना किसी व्यक्ति से कभी हमने अपील नहीं की। पहली शर्त थी कि तुम्हें ऐसा पंडित चाहिए हो तो दूसरा खोज लो। कि समाज संस्था के लिए भी ये समाज से अपील करने जाएंगे ये हमारा काम नहीं है, हम नहीं करेंगे, हमारा ये काम नहीं। हम तो त्याग का स्वरूप समझाएंगे। जिस साल जो बुला लेता है उसको 2-5 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है, फायदा वाला पंडित नहीं है। लेकिन ये दुर्भाग्य हमारा इस देश में कि दान के नाम पर अधिक चंदा इकट्ठा कराने वाला पंडित बड़ा पंडित माना जाता है, त्याग धर्म का स्वरूप समझाने वाला पंडित बड़ा नहीं माना जाता है। और ऐसा भेद हम मुनिराजों में भी करते हैं कि जहां मुनिराज जिस तीर्थ में पहुंच जाए वो तीर्थ का कल्याण हो जाए, नए नए पर्वत तीर्थ बन जाए, बे महाराज बड़े महाराज करोड़ों का परिग्रह जहां इकट्ठा हो जाए वो बड़े महाराज, और जहां महाराज से एक पैसा नहीं हो उन महाराजों को यह हार देने वाला नहीं मिलता। दुर्भाग्य ना समाज का, बोले क्या करे किसको कहे, नक्कार खाने में कहां रो जाकर के। ये बात अंदर में हमारे समझ में आई तो जो सुनते हैं उन्हें सुना देते हैं, जिनका भाग्य है उनकी समझ में आएगा, आएगा तो आएगा और नहीं आएगा तो नहीं आएगा। अपन को क्या, अपन तो अपना विकल्प पूरा करके अपने में दान का भी सच्चा स्वरूप हमारे ख्याल में क्या है बोलो आप। स्वरूप नहीं, पात्र का ख्याल नहीं, अपात्र का ख्याल नहीं, वस्तु के स्वरूप का ख्याल नहीं, क्या क्या है इस ये अर्थ ऐसा नहीं कि पंडित जी आपने बहुत अच्छा किया, ये दानवीर बहुत माथा पकड़ के चलते थे और हमको न मालूम क्या समझते थे, आज आपने अच्छी खटिया खड़ी कर दी इनकी। अरे भाई ये बात सुनकर नहीं देने वालों को खुश होने की जरूरत नहीं है। अरे वे मान के ही खातर सही देते हैं तो थोड़ा धर्म का प्रचार तो होता है, लेकिन नहीं देने वाले तो उनसे भी ज्यादा कि विषय के साल में खर्चेंगे कि नहीं। गुरुदेव श्री पंच कल्याणक में जाते थे ना तो दान अधिकार का एक श्लोक उद्धृत करते थे कि कौआ होता है ना कौआ, उनको वो खुरचन मिलती है तो वे 100 कौओं को इकट्ठा करके काव काव करके इकट्ठा करते हैं और फिर खाते हैं, अकेले नहीं खाते हैं। और तूने पुण्य पाप के योग से, पुण्य पाप के योग से इसलिए बोलता हूं कि पुण्य के उदय के बिना तो संपत्ति मिलती नहीं है और वर्तमान में पाप करे बिना संपत्ति मिलती नहीं है। दोनों का योगदान है। पुण्य पाप के योग से जो संपत्ति तेरे को प्राप्त हो गई है, यदि उसने तूने साधर्मियों को शामिल करके उनका उपयोग नहीं किया, तत्व ज्ञान के प्रचार में नहीं लगाया तो कौओं से भी जाएगा, उन्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन तो आप क्यों इन सेठियों के पीछे पड़े, बेचारे पैसा भी देते हैं, तुम्हारा स्पीकर भी उन्हीं के पैसे से आया है, ये फिल्म भी तुम्हारी उन्हीं के पैसे से बन रही है और उन्हीं के तुम उतार रहे हो। भाई हम किसी के शत्रु नहीं है, किसी के विरोध नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कि उनका पैसा भी खर्च होता है और सही स्वरूप नहीं समझने से जो उसका लाभ उन्हें प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त नहीं होता है तो वो सच्चा स्वरूप समझ ले तो उन्हें उसका सच्चा लाभ प्राप्त हो, इसलिए स्वरूप समझाते हैं। किसी देश से थोड़ी समझाते, हमारा क्या बैर विरोध है आपसे, बोलिए क्या झगड़ा है तुम लोग जिंदगी किसी से, कोई बताओ भाई हमें हारा तो आप बोलो, बहुत सेवा करते हैं सब तरह से, यहां से तांजी की थालियों में खाने को मिलता है, एयर कंडीशन कारों में घूमने को मिलता है, क्यों आप ही कहता से घूमेदार हम तो नहीं जाते, पाप आपने कमाया होगा चौकीदारी आप करते हो थालियों को रखा रखा करके और खाते हमें, हमारे तुम्हारे से क्या बैर विरोध है, बोलो नितिन भाई झगड़ा है कोई, हम क्यों आपकी निंदा करेंगे, और निंदा करेंगे तो पीठ पीछे करेंगे तुम्हारे मुंह पे क्यों करेंगे, हम तो ये चाहते हैं कि उसका सच्चा स्वरूप आप समझ लें तो उसका जो सच्चा पुण्य लाभ है वो आपको प्राप्त हो जाए, इस पवित्र भावना से स्वरूप समझाने की कोशिश करते हैं। राग द्वेष से कोई हमें तो दान का भी हमारा सच्चा स्वरूप हमारे ख्याल में नहीं है, देखो इसमें थोड़ी गड़बड़ी पूजन के कार्य की भी हुई है, आप ही की पूरी गलती नहीं है पंडित जी, ना माफ कर देना, क्या कहां गलती हुई है, उत्तम त्याग कहो जगे सारा और औषधि शास्त्र अभय आहारा, उत्तम त्याग कहो जग सारा, जगत में सार है, बात तो त्याग की चल रही और भेद गिना है दान के गिना दिए, उत्तम त्याग कहो जग सारा और औषध शास्त्र अभय आहारा, तो हमने समझ लिया कि चार प्रकार का जो दान है वही त्याग है, लेकिन एक गलती किसी ने समझा हो तो हमारा इतना भाग है कि कोई समझता ही नहीं है इसका अर्थ ही नहीं समझा, क्यों पंडित जी चर्चा करी त्याग की और भेद गिना दिए दान के, तो हमको ऐसे ही लगेगा ना यही चार प्रकार का दान ही त्याग है, बेचारे पंडित क्या करे, तो उन्होंने अर्थ करना शुरू कर दिया कि चार प्रकार का दान है त्याग है, पूजनकार समझता नहीं था ये बात नहीं है भाई साहब, पूजनकार तो सब समझते थे लेकिन हम इतने अधीरिया हैं कि पूरी बात नहीं सुनते हैं पढ़ते हैं, जब नीचे की पंक्ति पढ़ो, निश्चय राग द्वेष निर्वारे और ज्ञाता दोनों दान समान, क्या करें कि निश्चय त्याग तो राग द्वेष का निवारण करना है, आगे ना बात, अपने ज्ञाता दोनों दान समारा, ज्ञाता माने सम्यक दृष्टि, दोनों दानों को संभालता है, तो दोनों दान कौन फिर, दान तो चार बताए थे ये दो कैसे रह गए, दोनों माने निश्चय दान और व्यवहार दान, वो तो निश्चय दान माने त्याग और व्यवहार दान माने दान, अथवा समझे ना, निश्चय माने त्याग और व्यवहार माने दान, ये अर्थ है उसका, भेद करते ही तो व्यवहार हो जाता है ना, तो चार भेद किए तो व्यवहार हो गया, पूजा का पूजन का तो सब समझता था, उसने लिख दिया ना कि निश्चय राग देश निर्वार है, राग देश का निवारण करना निश्चय त्याग है, निश्चय दान माने त्याग और ज्ञाता माने संबंधित, दोनों दान माने निश्चय दान माने त्याग, राग देश का त्याग और व्यवहार दान माने आहार औषधि और ये चार प्रकार का दान ख्याल में आ गया कि नहीं, तो दोनों बातें आ गई कि नहीं आ गई, अब आगे देखिए बहुत मर्म की बात है, जाता दोनों दान समारे, दोनों समारे कूप जल समंदर घर में परिनया, निज हाथ दीजे साथ लीजे खाया खोया बह गया, इसका अर्थ मुझे नहीं बताना है, सब पंडित बताते हैं क्या जरूरत है मुझे बताने की, लोभ में थोड़ी चढ़ाना है, तो क्या बताना है मुझे, तो धनी साधु शास्त्र अभय देवैया त्याग राग विरोध को, क्या अर्थ है इसका बोलो, तो सोचा कभी, आपके यहां तो पढ़ते ही नहीं होंगे तो आपसे क्या पूछूं, लेकिन हमारे सब दिगंबर लोग 50-50 साल से पढ़ रहे हैं, रोजी में 10 दिन तक। क्या अर्थ इस पंक्ति का? धनी साधु शास्त्र अभय देवैया, धन्य है वे साधु, क्योंकि त्याग धर्म तो साधुओं की मुख्यता से है। पैसा साधुओं के पास पैसा है, ये पैसा दान नाम का त्याग होता तो साधु, त्याग धर्म तो साधुओं की मुख्यता से है। धन्यवाद किसको दिया अशोक जी? धनी साधु, लेकिन चार में से दो की छुट्टी कर दी। धनी साधु शास्त्र अभय देवैया, वे साधु धन्य हैं जिन्होंने ज्ञान दान दिया और अभय दान दिया। आहार दान की बात नहीं करी, औषध दान की बात नहीं करी, क्योंकि साधु तो आहार लेते हैं, देते थोड़ी है। कितना विवेक है क्यों प्रकाश, कभी सोचा इस पे? धनी साधु शास्त्र अभय देवैया, दो दान, त्याग राग विरोध को, और राग और विरोध का त्याग किया। मिथ्यात्व का क्यों नहीं लिखा? क्योंकि साधु मिथ्या दृष्टि होते ही नहीं, तो मिथ्यात्व का त्याग किया तब तो साधु भय है, और राग और विरोध द्वेष मिथ्यात्व का त्याग किया, तो त्याग धर्म भी हो गया, तो दोनों हो गए। कौन से? त्याग धर्म और राग द्वेष का त्याग किया और ज्ञान दान दिया, और अभय दान, अभय दान मैंने वस्तु का स्वरूप समझाया ना, कि कोई एक दूसरे का भला बुरा नहीं कर सकता है, डरने की कोई जरूरत नहीं, अभय दान। दिन दान श्रावक साधु दोनों, लहे नाही बोध को। कितनी मैत्री बताई है, श्रावकों ने साधुओं को आहार दान दिया, औसत दान दिया। औसत दान मालूम कैसे? कि महाराज को कोई बीमारी है तो शुद्ध सात्विक काष्ट औषधि है जो महाराज के खाने के लायक है, तो आहार के समय उस भोजन में डाल देना, वो औसत दान है। तो उन्होंने क्या, श्रावक ने दिया आहार दान औषध दान, और साधु ने दिया श्रावक को क्या, ज्ञान दान और अभय दान, एक दूसरे के पूरक हो गए ना। क्यों? बिन दान श्रावक साधु दोनों, लहे नाही बोध को। श्रावक को मुनिराज नहीं समझाए वस्तु का स्वरूप तो कैसे समझे, ख्याल में आए ना? तो श्रावक रह जाते बिना ज्ञान दान के, और श्रावक मुनियों को शुद्ध आहार नहीं दे तो भूखे भजन न होए गोपाला। क्यों? उनका उपयोग भी आत्मा में स्थिर कैसे होता, ख्याल में आए ना? अरे भाई, त्याग का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण आदिनाथ भगवान है, कि जिन्होंने सर्वस्व त्याग करके युग के आदि में नग्न दिगंबर दीक्षा ले ली है ना, और दान का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण राजा श्रेयांश है, कि जिन्होंने उनको सबसे पहले, वही प्रसिद्ध है कि नहीं, आहार दान देने वाले के पैसा देने देने वाले प्रसिद्ध है, बोलो कौन प्रसिद्ध है अपने? उनने दिव्य ध्वनि के द्वारा ज्ञान दान दिया, और उन्होंने आहार दान देकर के मुनियों को आहार दान की विधि का आरंभ किया। तो क्या अंतर है ज्ञान में और दान में और त्याग में, उनका क्या स्वरूप है, ये समझकर हम त्याग धर्म को भी अपनाएं और दान भी खूब भरपूर देवे, इस भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूं।